नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवली निगम। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा संपर्क रसद और व्यापक सुनिश्चित करता है। बांग्लादेश में नव निर्वाचित सांसद और मंत्रिमंडल सदस्य मंगलवार को शपथ ग्रहण करेंगे। अमेरिका की सेना ने दिसंबर में सीरिया में हुए हमले के प्रतिशोध में इस्लामिक स्टेट के 30 से अधिक ठिकानों पर हमले किए। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 4 अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य कारणों से हटने के बाद 4 नए अंतरिक्ष यात्री शामिल हुए। और ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में कोलंबो में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे का उद्देश्य संपर्क रसद और व्यापार सुनिश्चित करना है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में कल डॉ जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में तत्काल सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। इसका उद्देश्य समकालीन भू राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित और आज की वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करना है। उन्होंने तेल खरीद नीति के बारे में कहा कि भारत में तेल कंपनियां यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों की तरह उपलब्धता, लागत और जोखिम को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम हित के निर्णय लेती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विश्व अधिक बहुध्रुवीयता की ओर बढ़ रहा है।
विश्व अधिक बहुध्रुवीयता की ओर अग्रसर है और निर्णय लेने के लिए कई और स्वतंत्र या स्वायत्त केंद्र होंगे। संभवतः हम में से कई लोगों का झुकाव यूरोप की तरफ है, क्योंकि हमने पिछले कुछ वर्षों में यूरोप में एक प्रकार का रणनीतिक पुनर्जागरण देखा है।
विदेश मंत्री ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान G7 देशों के विदेश मंत्रियों से भी बातचीत की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सार्थक सुधारों सहित UN@80 एजेंडा के प्रति भारत के समर्थन को दोहराया। डॉ जयशंकर ने समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा, प्राथमिक प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में कार्य करना, बंदरगाह सुरक्षा को मजबूत करने और लचीले पनडुब्बी केबल अवसंरचना में योगदान देने में देश की भूमिका पर बल दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि बातचीत से भारत और G7 देशों के बीच कई समानताओं और साझा हितों का पता चला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने जर्मनी के म्यूनिख में यूरोपीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मंत्री एरिक बेसवेंगर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस वर्ष जनवरी में जर्मन चांसलर भारत यात्रा पर आए थे। उन्होंने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच गहरी द्विपक्षीय साझेदारी की मजबूती के विषय पर बातचीत की गई। दोनों नेताओं के बीच हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी चर्चा हुई। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी 16 फरवरी को 4 दिन की ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा सहयोग प्रगाढ़ करना तथा दोनों देशों के बीच बढ़ते तालमेल को सुदृढ़ करना है। सेना प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यापक वार्ता करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यास, पेशेवर आदान प्रदान और क्षमता निर्माण सहित सैन्य गतिविधियों में वृद्धि करना है। जनरल द्विवेदी ऑस्ट्रेलियाई रक्षा महाविद्यालय के कमांडर से भी बातचीत करेंगे तथा ऑस्ट्रेलियाई कमान और स्टाफ महाविद्यालय में अधिकारियों को संबोधित करेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बांग्लादेश में नवनिर्वाचित सांसदों और मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंगलवार 17 फरवरी को शपथ दिलाई जाएगी। हाल ही में संपन्न आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की है। एक रिपोर्ट।
BNP अध्यक्ष तारिक रहमान के प्रेस सचिव साले सिबली ने कहा कि नव निर्वाचित सांसद मंगलवार सुबह 10 बजे जातीय संसद भवन में शपथ लेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त AMM नासिरुद्दीन उन्हें शपथ दिलाएंगे। उसके बाद दोपहर 4 बजे राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन संसद के साउथ प्लाजा में नए मंत्रिमंडल के सदस्य को शपथ दिलाएंगे। संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार सांसदों के शपथ लेने के बाद बहुमत वाली पार्टी अपने संसदीय दल के नेता का चुनाव करेगी। चुना गया नेता राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का औपचारिक दावा पेश करेगा। अधिकारियों के अनुसार समारोह की तैयारियां चल रही है और इसमें करीब 1000 मेहमानों के शामिल होने की संभावना है। नवल सिंह परमार, विश्व समाचार, ढाका।
अमरीकी सेना ने इस महीने की शुरुआत में सीरिया में इस्लामिक स्टेट के 30 से अधिक ठिकानों पर 10 हमले किए। पिछले वर्ष दिसंबर में घात लगाकर किए गए हमले में 2 अमरीकी सैनिकों और 1 नागरिक दुभाषी की मौत की घटना की प्रतिक्रिया में ये कार्रवाई की गई है। एक रिपोर्ट।
अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा कि 3 फरवरी से 12 फरवरी के बीच किए गए इन हमलों में आतंकवादी समूह से जुड़े हथियार भंडारण स्थलों, संचार केंद्रों और अन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। पिछले 2 महीनों में 100 से अधिक ठिकानों पर किए गए हमलों में 50 से अधिक इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी मारे गए या पकड़े गए हैं। यह घटनाक्रम अमरीकी सेना द्वारा सीरिया से इराक में मुकदमे के लिए हजारों इस्लामिक स्टेट के कैदियों को स्थानांतरित करने की पुष्टि के 1 दिन के बाद सामने आया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के 4 नए यात्री पहुंच गए हैं। 4 अंतरिक्ष यात्री स्वास्थ्य कारणों से वापस लौट गए थे। पिछले 65 वर्षों में यह पहला मौका है जब नासा ने स्वास्थ्य कारणों से अंतरिक्ष यात्रियों को वापस बुलाया। इनके लौटने के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर केवल 3 यात्री रह गए थे। नए यात्री अंतरिक्ष केंद्र में लगभग 9 महीने तक रहेंगे। इनमें अमरीका के 2 तथा फ्रांस और रूस के 1-1 यात्री शामिल हैं। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में 3 समुदायों पर बंदूकधारियों के हमले में 32 लोग मारे गए हैं। देश में नाइजर प्रांत के बुर्गो इलाके में बंदूकधारियों ने टुंगा, काकेरी, कोंसो को और पिस्सा समुदायों को निशाना बनाया। उत्तरी नाइजीरिया में इस्लामिक चरमपंथी और हथियारबंद गुट फिरौती के लिए अक्सर अपहरण करते रहते हैं। कुछ ही सप्ताह पहले क्वारा प्रांत में बंदूकधारियों के हमले में 162 लोगों की मौत हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट में कहा है कि पिछले वर्ष अक्टूबर में सूडान के डारफर इलाके में एक अर्धसैनिक समूह की 3 दिन की हिंसा में 6,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। रिपोर्ट के अनुसार रैपिड सपोर्ट फोर्सेस आरएसएफ ने अल्फाशर शहर पर कब्जे के लिए जिस तरह की हिंसा की वो युद्ध समाप्त की श्रेणी में आती है। पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच कोलंबो में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से होगा। दोनों टीमें 2-2 मैच खेलकर 4-4 अंक पर हैं। एक रिपोर्ट।
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ 7-1 के शानदार रिकॉर्ड के साथ भारतीय क्रिकेट टीम आज कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होने वाले महामुकाबले में पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ उतरेगी। लगातार 2 मुकाबले जीतकर दोनों टीमें 4-4 अंकों के साथ आमने सामने होंगी, जिससे ये टक्कर और भी रोमांचक बन गई है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से हजारों क्रिकेट प्रेमी इस ऐतिहासिक भिड़ंत को देखने कोलंबो पहुंच चुके हैं और बारिश की आशंका के बावजूद एक हाई वोल्टेज मुकाबले की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस मुकाबले को लेकर कुछ समय तक संशय बना रहा जब पाकिस्तान सरकार ने बहिष्कार की घोषणा कर दी थी, लेकिन मैच से कुछ ही दिन पहले उसने यू टर्न ले लिया था। अहमद मुइन फारूकी, कोलंबो।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज सिडनी में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर के हाथ रहेगी। पिछले वर्ष दिसंबर में भारतीय टीम ने मेहमान टीम श्रीलंका को 5-0 से हराकर श्रृंखला अपने नाम की थी। मिलानो कोचीना 2026 शीतकालीन ओलंपिक में दक्षिण अमरीकी देश ब्राजील के स्कीयर लुकास पिन्हेरो ब्राथिन ने ज्वाइंट स्लालम में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ये शीतकालीन खेलों में दक्षिण अमरीका का ये पहला पदक है। ज्वाइंट स्लालम अल्पाइन स्कीइंग और अल्पाइन स्नोबोर्डिंग की एक प्रतिस्पर्धी विधा है। पदक तालिका में नॉर्वे 10 स्वर्ण पदकों सहित कुल 20 पदक के साथ शीर्ष पर है। इटली 18 पदक के साथ दूसरे और संयुक्त राज्य अमेरिका 17 पदक के साथ तीसरे नंबर पर है। भारत के आरिफ मोहम्मद खान कल अल्पाइन स्कीइंग के स्लालम स्पर्धा में हिस्सा लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा संपर्क रसद और व्यापार सुनिश्चित करता है। बांग्लादेश में नव निर्वाचित सांसद और मंत्रिमंडल सदस्य मंगलवार को शपथ ग्रहण करेंगे। अमेरिका की सेना ने दिसंबर में सीरिया में हुए हमले के प्रतिशोध में इस्लामिक स्टेट के 30 से अधिक ठिकानों पर हमले किए। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 4 अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य कारणों से हटने के बाद 4 नए अंतरिक्ष यात्री शामिल हुए। और ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में कोलंबो में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।